दो इट इज़ वेरी एकेडमिक लेकिन इज फुल ऑफ मोहब्बत, बिकॉज वो कहते हैं कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी उसको सूरतुल इखलास से मोहब्बत होगी. एंड इन दिस इन दिस इन द सपोर्ट ऑफ दिस सेंटेंस दे मेंशन द सीरा वाकयात जो सहाबा की मोहब्बत थी इस सूरत के बारे में. जैसे एक वाकया आता है कि एक नरेशन का मफहूम है कि एक ग्रुप को मिलिट्री एक्सपीडिशन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा. जिन सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिलिट्री एक्सपीडिशन का इंचार्ज बनाया, ये खूबसूरती थी मुसलमानों की और ये खूबसूरती होनी चाहिए मुसलमानों की कि मुसलमान हर मैदान में बैलेंस्ड होते हैं. वेरी बैलेंस्ड इन अ वे कि जो मुसलमान सोल्जर्स थे, जो मुसलमान किसी मिलिट्री एक्सपीडिशन के इंचार्ज थे, सिपहसालार थे, ऐसा नहीं था कि वो दीन से बिल्कुल ही गाफिल हैं, सिर्फ जंगें लड़ने उनको आते हैं, सिर्फ जो हैं वो वॉरियर हैं, सिर्फ उनको तलवार उठानी आती है, सिर्फ जो हैं वो सामने दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं. बट ही नेवर बॉदर्ड के उनको नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी, या उनको अल्लाह की इताअत करनी है कि नहीं करनी. नो, मुसलमान ऐसे नहीं होते, बिलीवर्स ऐसे नहीं होते थे. सहाबा ने खूबसूरत बैलेंस दिखाया है. वो जो दिन के सवारी करने वाले और जंगें लड़ने वाले और जिहाद करने वाले होते थे, वो रातों में अल्लाह के हुजूर खड़े होकर बहुत ही हम्बल वे में अल्लाह के हुजूर सजदों में गिड़गिड़ाया करते थे. दैट वॉज द ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपल जो कि अल्लाह के रसूल के हाथ की लगाई हुई खास फसल थी, सहाबाए कराम. तो सहाबाए कराम में आप देखें कि मिलिट्री इंचार्ज भी वही हैं सहाबी, और क्योंकि वो दीन में भी परफेक्ट होते थे तो जहाँ वो बेहतरीन जंग लड़ने वाले हैं वहाँ वो बेहतरीन इन दीन भी हैं. दैट्स द ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. आपका बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो और वो अपनी मस्जिद में अजान भी देता हो, नमाज की जमात भी कराता हो, दैट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. उसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत भी वैसी ही हो, वो अपने डेली मैटर्स में अपने घर वालों के साथ उसी अखलाक के साथ मामला करता हो कि जिसकी जो पोजीशन है वो उसको दे दी जाए, वो माशरे में एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर सामने आता हो. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन और यही सहाबा का कॉम्बिनेशन था. तो ये मिलिट्री एक्सपीडिशन जो गया उसमें जो सहाबी सिपहसालार थे, हेड थे उस पूरे ट्रूप के, वो ही लीडर इस सेंस में भी थे कि जमात भी वही कराते थे, यानी इमामत भी उन्हीं की होती थी और बाकी पूरी फौज उनके पीछे मुक्तदी बनती थी. तो अब जब ये एक्सपीडिशन चला गया और मुख्तलिफ़ नमाजें होना शुरू हुई तो इनके पीछे जितने भी बाकी सहाबा थे उन्होंने महसूस किया कि ये जब भी नमाज पढ़ाते हैं तो ये सूरह फातिहा के बाद कोई कुरान का पोर्शन पढ़ते हैं और उसके बाद ये रुकू में जाने से पहले हमेशा सूरतुल इखलास पढ़ते हैं. एवरी टाइम सूरतुल इखलास पढ़ते हैं. अब आप मुसलमानों का डिसिप्लिन देखें. दिस इज़ डिसिप्लिन, दिस इज़ अदब. हमने तो आज दीन को सीख कर बहस करने को समझा कि शायद दिस इज़ एन दीन. नो इट इज़ नॉट. हमें लगता है कि हम तुर्की बतुर्की सामने वाले को जवाब देते रहेंगे विदाउट कीपिंग इन माइंड द स्टेटस ऑफ दैट पर्सन, द रुतबा ऑफ दैट पर्सन. हम कहेंगे नहीं नहीं, इस्लाम ने हमें ये थोड़ी कहा है कि मुंह बंद करके बैठ जाओ, इस्लाम ने हमें ये थोड़ी कहा है कि बात ना कर सको, इस्लाम ने आपको ये नहीं कहा. बट इस्लाम ने तो आपको दीन के साथ, तस्किया के साथ हिकमत सिखाई है और अल्लाह के रसूल तो हमें हिकमत सिखाने ही आए थे. एंड हिकमत इज दिस कि कब, कहाँ, किससे, कैसे, कितनी बात करनी है, दैट्स द हिकमत. आप इन सहाबा की ट्रेनिंग देखें. जो ये ट्रेनिंग है ये हमें अपने अंदर लेकर आनी है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उनको अब इंचार्ज बना दिया था. वो सिपहसालार भी थे, हेड ऑफ द ट्रूप भी थे और वो इनकी इमामत कराने वाले इमाम भी थे. तो रिलीजियसली भी ये इनसे आगे हो गए. ड्यूरिंग पूरा एक्सपीडिशन ऑल दो सहाबा महसूस कर रहे थे कि ये हर रुकू से पहले सूरह इखलास क्यों पढ़ाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपीडिशन उन्होंने से किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं कहा. हमारे यहाँ तो अब अदब ख़त्म हो गया ना, हम ना उस्ताद का अदब करते हैं, ना स्कॉलर्स का अदब करते हैं, ना बुज़ुर्गों का अदब करते हैं, ना बूढ़ों का अदब करते हैं, ना घर में मौजूद अपने माँ बाप का इकराम करते हैं. ख़त्म, एवरीथिंग इज़ ख़त्म. उस्ताद को ये आराम से कह देना मैसेज करके, यू सीम टू बी वेरी रूड, आई एम सॉरी, बट क्या ये सूट करता है? किसी के मैसेज की चार लाइंस पढ़ के आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि शी इज़ रूड और ही इज़ रूड? आप और मैं तो खुशगुमान दीन को अडॉप्ट करने वाले लोग हैं. आपको और मुझे तो कहा गया है कॉन्स्टेंटली खुशगुमानी अडॉप्ट करो. कैसे हम ये सोच सकते हैं? सो अदब, अपने बच्चों को उस्ताद का अदब सिखाएं. आजकल ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो कुछ बहुत से बच्चे अपने ऑनलाइन टीचर्स के साथ मजाक कर रहे हैं, अपने ऑनलाइन टीचर्स प्रोफेसर्स के साथ, ये एक रिफ्लेक्शन है उस सब का जो इतने सालों में हमने अपने बच्चों को बड़ों का अदब करना सिखाया। जो उस्ताद का अदब नहीं करता वो कभी भी इल्म को अपने अंदर अपनी शख्सियत का हिस्सा नहीं बना सकता। उसको 2+2 करना आ सकता है बट उसको ज़िंदगी में लोगों के साथ ग्रेस से मामला करना नहीं आ सकता है। अदब पहली चीज़ है मुसलमान की। तो इन सहाबा ने नोट किया कि ये हर रकत में जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कोई और पोर्शन कुरान का पढ़ते हैं जो इनको पढ़ना होता है, और फिर रुकू में जाने से पहले एवरी टाइम ये सूरतुल इखलास पढ़ते हैं। तो उन्होंने वहाँ नहीं पूछा। फिर जब ये लोग एक्सपीडिशन वापस आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एज़ पर स्केड्यूल इनकी मुलाकात हुई, तो तब इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम पूछना चाहते हैं, और सामने बैठे थे, आमने सामने लीडर भी और उनके पीछे के सहाबा भी। उन्होंने कहा कि हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे या रसूलुल्लाह आपकी प्रेजेंस में, कि जब भी ये जमात कराते थे तो रुकू से पहले ये सूरतुल इखलास ज़रूर पढ़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस का मफहूम आता है कि आपने उसकी रीज़न दरियाफ्त की। तो उन सहाबी ने कहा कि इस सूरत के अंदर जो अल्लाह की सिफात आई हैं, जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स आए हैं, मैं उनको पढ़े बगैर रह नहीं सकता। यानी जब मैं पढ़ता हूँ, कहना क्या चाह रहे थे, दिस इज़ नॉट हदीस के अल्फाज राइट, नाइदर इट्स सम मफहूम, ये मैं बता रही हूँ आपको। वो कहना क्या चाह रहे थे कि यानी जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती हुई महसूस होती है। दैट्स वाई मैंने कैप्शन आपको वर्चू नंबर 5 का बताया है कि स्कॉलर्स कहते हैं कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी उसको सूरतुल इखलास से मोहब्बत होगी। एक और वाकया सीरत में आता है एक और सहाबी का, जो कि कुबा की मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। और उनके लिए आता है कि वो जाहिर बात है इमाम थे, नमाज पढ़ाते थे, तो उनके लिए आता है कि वो हर रकत में इसी तरह से सूरह फातिहा पढ़ते थे, फिर कोई कुरान का पोर्शन कभी पढ़ते थे और कभी नहीं पढ़ते थे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास पढ़ते थे। तो लोगों ने महसूस किया, कुछ लोगों ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें लगता है कि आपने जिनको हमारा इमाम बनाया है कुबा की मस्जिद में, उनको शायद और कुरान हिफ्ज ही नहीं है, बिकॉज वो हर वक्त सूरतुल इखलास पढ़ते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम सूरतुल इखलास पढ़ते रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया कि ताकि वजह दरियाफ्त की जाए कि देखें क्या वजह है कि क्यों ऐसा वो करते हैं। तो रसूलुल्लाह ने जब उन सहाबी को बुलाया तो उन सहाबी ने जो बात कही उसका मफहूम आता है, उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है और ये सूरत मैं मुझे अल्लाह के बारे में बताती है, मैं इसको हमेशा पढ़ता हूँ और मेरी मोहब्बत बढ़ती जाती है। सही बुखारी की हदीस में भी आता है इन्नी अहब्बु हाज़िहिस्सूरा कुल हुवल्लाहु अहद, यानी मैं जब भी सूरत को पढ़ता हूँ मुझे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती हुई महसूस होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में क्या कहा, ये वाकया जो है आपको सही बुखारी में मिलता है, जब उन्होंने ये कहा कि मैं जब ये सूरत पढ़ता हूँ कुल हुवल्लाहु अहद मुझे लगता है अल्लाह की मोहब्बत बढ़ गई, कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन हुब्बहा अदखलकल जन्ना, जान लो कि इस सूरत की मोहब्बत विल एंटर यू टू जन्ना, तुम्हारी इस सूरत की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल करवा देगी। ये है सहाबा की इस सूरत से मोहब्बत, और इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं वर्चू नंबर 5 कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो डेफिनेटली इस सूरत से मोहब्बत करता है। सही, वर्चू नंबर 5 ही के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हाफिज़ इब्ने हजर मेंशन करते हैं, हाफिज़ इब्ने हजर असकलानी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सही बुखारी की शरह एक्सप्लेनेशन लिखी, वो कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत का पार्ट मेनली, आपको इनकी किताबों के अंदर ये पॉइंट ज़रूर मिलता है कि आपको अल्लाह की मोहब्बत का पार्ट ये है कि आप इस सूरत को अपनी ज़िंदगी में इंटरनलाइज कर लें, आप वाकई समझें और इस सूरत के थ्रू समझें कि तौहीद क्या है और अल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाती है और क्यों की जाती है और उसको रब के मुकाम पर क्यों रखा जाता है। इसीलिए सारे क्लासिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि मुसलमान को अपनी तौहीद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर यूथ स्पेशली, जो कहते हैं कि सारे रिलीजन्स को ब्लेंडर में डालो और उसकी स्मूदी बना दो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब तो ठीक है, अम्मी आप इतनी जजमेंटल क्यों होते हैं, आप क्यों कहते हैं कि वो उसका बेटा दीन सही नहीं है तुम उसके लिए दुआ करो, बेटा उसको अच्छी बात बता दो, आप ये क्यों कहते हैं। जो जो कर रहा है उसको करने देना। हमारे बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड राइट नाउ, कि जो जो करता है उसको सब करने दो, सब रिलीजन ठीक है। हालांकि आपका और मेरा ये कहना कि इस्लाम इज नाउ द अल्टीमेट रिलीजन फॉर द सेल्वेशन, ये मेरा और आपका क्लेम नहीं है, ये तो कुरान कहता है, इन दीन इंड अल्लाह इस्लाम, ये तो कुरान कह चुका है 1450 साल पहले। तो अब जिसको भी आखिरत की सेल्वेशन चाहिए, समहाउ अब उसको कुरान को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तौहीद को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं, ये वर्चू नंबर 5 में ही बता रही हूँ, कि वो कहते हैं कि एक मुसलमान के लिए, एक बिलीवर के लिए उसकी तौहीद उसको सबसे ज़्यादा महबूब होती है। दिस इज़ दी इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग इन माई लाइफ, कि अल्लाह ने मुझे शिर्क से महफूज रखा। मैं किसी बुत के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर उससे दुआएं नहीं मांगती हूँ। मैं किसी को अल्लाह का बेटा नहीं कहती हूँ। मैं किसी को जो हूँ वो अल्लाह के साथ एसोसिएट नहीं करती हूँ एज अ पार्टनर। इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। और जाहिर है ऐसा सिर्फ वो करता है जिसको अपने दीन पर कोई डाउट, कोई शक, कोई शुभा नहीं होता। और हमें ये देनी है मोहब्बत अपने बच्चों को, और आएगी उनमें ये मोहब्बत। बिल्कुल भी अपने आप को डिस्करेजमेंट की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने बच्चों से होपलेस होने की ज़रूरत है। वो आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप की प्रोजनी हैं, आपके माँ बाप की ज़ुर्रियत हैं। आपके माँ बाप ने मेहनतें की, दुआएं की, रिस्क हलाल कमाया। हो नहीं सकता कि वो रिस्क हलाल वाली जीन्स जो फिल्टर डाउन हो रही हैं उनका इम्पैक्ट तौहीद के फूल की शक्ल में या तौहीद के पेटल्स की शक्ल में हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में ना खुले। जस्ट बी होपफुल और कीप स्ट्रगलिंग फॉर द बेस्ट। दुआ करते रहें और उनको अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करते रहें। सो वर्चू नंबर 5, कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो सूरतुल इखलास से मोहब्बत करता है। और इसी वर्चू नंबर 5 में जिसको तौहीद मिल जाती है उसके लिए दुनिया में तमाम मज़ाहिब में सबसे ज़्यादा महबूब उसकी तौहीद होती है। वर्चू नंबर 6 जो कि स्कॉलर्स मेंशन करते हैं, वो कहते हैं कि सूरतुल फातिहा के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत, और जो कि मेजॉरिटी मुसलमान बच्चों को याद भी होती है, मेजॉरिटी मुसलमानों को याद होती है, एडल्ट्स को भी, वो सूरतुल इखलास। चाहे हम आउट ऑफ लेजीनेस ही याद करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम सूरतुल इखलास को अपने बच्चों को सबसे पहले जब नमाज पढ़ना सिखाते हैं हम उनको सूरतुल इखलास सिखा देते हैं। अल्फाज आसान हैं, अल्फाज में एक राइम है, और अल्फाज का राइम जो है वो उसको हिफ्ज़ करने में आसानी फराहम करता है। तो चाहे आउट ऑफ लेजीनेस करते हैं, लेकिन इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी किताब में लिखते हैं, और बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने लिखी, वो कहते हैं कि चाहे हम मुसलमान सुस्ती की वजह से ही 2 सूरतें याद करते हैं, मगर इसमें भी रब का मोजज़ा है कि रब ने जो 2 सूरतें आसान अल्फाज में मुख्तसर तरीन रखी हैं, और जो उम्मत चाहे आउट ऑफ लेजीनेस याद करती है उसमें भी ऐसा कंप्लीट इस्लाम का मैसेज जाता है उन 2 सूरतों से कि वो पूरी शरीयत को एनसर्कल कर लेता है। कैसे? वो 2 सूरतें कौन सी हैं? एक तो सूरत इखलासी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरी है सूरतुल कौसर। इंशाल्लाह इन 7 सूरत की स्टडी में हम सूरतुल कौसर अपनी आखिरी सूरा करेंगे। तो सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास ये दोनों मुसलमानों को बहुत आती हैं। सही, आई एम कवरिंग 6 पॉइंट ही चल रहा है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत जो कि सूरतुल इखलास है, और इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि ये मोजज़ा है इस कलाम का कि अल्लाह ने 2 सूरतें जो मुसलमानों के लिए आसान रख दी याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दोनों ऐसी हैं कि अगर आप सूरतुल कौसर को देखें तो वो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करती है, रसूलल्लाह से मोहब्बत के इजहार की सूरत है। हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि जब सूरतुल कौसर नाजिल हुई थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरैश कितनी बुरी बुरी एलिगेशंस लगा रहे थे। तो अल्लाह ने रसूलल्लाह को इनाम के तौर पर और काउंसिल करने के लिए सूरतुल कौसर नाजिल की थी। तो सूरतुल कौसर जब हम पढ़ते हैं तो हम ऑटोमेटिकली रसूल से मोहब्बत, रसूल के मुकाम को वहाँ लेकर जाना जो अल्लाह ने उनको दिया है, ये एफर्ट हम खुद ब खुद कर रहे होते हैं। तो एक है सूरतुल कौसर जो रसूल का दिफा करती है, और दूसरी है सूरतुल इखलास जो अल्लाह का दिफा करती है, अल्लाह से मोहब्बत का एलिमेंट शो करती है। اس لیے کہ اللہ کے بارے میں قریش کا عقیدہ ڈسٹارٹڈ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل کی تاکہ اللہ کا درست تعارف مل جائے, اور اللہ کا درست تعارف اس آج کی سیکولر ورلڈ میں نہایت ضروری ہو گیا ہے. ہاں ہم سب جانتے ہیں اللہ کون ہے, ہم سب جانتے ہیں اللہ رب ہے, لیکن پلیز اپنی آنے والی جنریشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس رب کو ہر اینگل سے جانیں, جس جس اینگل سے اس نے اپنے کلام میں ہمیں اپنا تعارف کرایا ہے, تاکہ ہم اپنے بچوں کو جہاں موقع ملے جیسے موقع ملے اپنے رب سے جوڑنے کی بات کریں. یہ سیکولرزم اتنا رائز پر ہے اس دنیا کے اندر کہ اس وقت ایک ایک مسلمان کی, جو اراؤنڈ اس وقت 2 بلین کے قریب مسلمان پہنچ رہے ہیں الحمدللہ, وی آر گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ 2 بلین ان دا پاپولیشن آف 7.5 بلین آف دس ورلڈ. 2 بلین مسلمانوں کا اس وقت اسٹرانگ کنوکشن ہونا چاہیے, اسٹرانگ ہم مسلمانوں کی اس وقت یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے دیٹ وی ڈیفینڈ ریلیجن, وی کین ڈیفینڈ پروفٹ, اینڈ وی کین ڈیفینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ اس وقت ہماری اسٹرینتھ ہے, جہاں سیکولرزم اتنا اپنے رائز پر ہے. ہمیں کوئی امبیرس مسلم بن کر زندگیاں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے, کیونکہ دنیا میں بلینڈ کرنا ہے تو ہم دین بھی ایسا پریزنٹ کریں کہ جس میں ادھر بھی بات ہو جائے اور ادھر بھی بات ہو جائے, دین بھی چلتا رہے اور دنیا بھی چلتی رہے. نہیں, ہم اللہ کے مقام کو کم نہیں کر سکتے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم نہیں کر سکتے, ہم قرآن کے احکامات میں توڑ موڑ نہیں کر سکتے, ہم نے اللہ کو اللہ ہی کے مقام پر رکھنا ہے. سو دس از دا سکسٹھ ورچو کہ جو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. دا پوائنٹ از ہمارے بچوں کو آتی ہے, اب صرف ان کو اس کا فہم دے دیں, اب صرف اس صورت کے تھرو ان کو بتائیں کہ اللہ دیکھو بیٹا تمہارے بہت قریب ہے, اینڈ ہی از دا اونلی ون جو تمہیں ہر مشکل سے نکال سکتا ہے. سو دس از ورچو نمبر 6. ورچو نمبر 7 جو کہ آپ کو ملتا ہے, وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ صورت خالق اور مخلوق کا فرض بہت کلیئرٹی سے اور بہت ہی آسان الفاظ میں واضح کرتی ہے. یہ صورت خالق اور مخلوق کا فرق بہت کلیئرٹی سے واضح کرتی ہے. کیسے؟ لکھتے ہیں امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی کتاب میں کلاسیکل اسکالرس کی اس مثال کو لکھا ہے, اس ورچو کو کہتے ہیں کہ مخلوق کی اگر اولاد نہیں ہوتی, یعنی مخلوق کے اگر انسانوں کے اگر بچے نہیں ہوتے, تو اٹس اے کائنڈ آف اے پوائنٹ آف اے ڈیفیشنسی کسی اینگل سے. مگر اللہ الہ اگر اس کے ساتھ اولاد کو لگا دیا جائے, اگر اولاد کا ایٹریبیوٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے, تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے, یہ خالق کی شان کے خلاف. دس از دا مین ڈفرینس بٹوین خالق اینڈ مخلوق. پرفیکٹ گاڈ وہ ہوگا ود کیپیٹل جی جس کے آفسپرنگز نہیں, جس کے پارٹنرز نہیں, جس کو کوئی کمپینین نہیں چاہیے, لا ند لہ جس کو کوئی شریک نہیں چاہیے. دس از ورچو نمبر 7, دا مین بیسک ڈفرینس بٹوین خالق اینڈ مخلوق جو سورۃ الاخلاص دیتی ہے. ورچو نمبر 8 اینڈ ویری امپورٹنٹ ورچو, ویری امپورٹنٹ. سورۃ الاخلاص کے لیے کہا جاتا ہے آلسو ود سورۃ الاخلاص کہ سورۃ الاخلاص قرآن کے میسج کی پلس قرآن کی حفاظت کی گواہی دینے والی سورت. سورۃ الاخلاص پلس سورۃ الفلق پلس سورۃ الناس, ان تینوں سورتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں سورتیں قرآن کی حفاظت اور قرآن کے میسج کی حفاظت کی ذمہ داری واضح کرنے والی سورت ہیں. یعنی دس از ون آف دا سورا, یا دیز آر 3 سورا جو انڈیکیٹر ہیں کہ قرآن محفوظ ہے. کیسے؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ قرآن کے پروٹیکشن کی دلیل اس سورت میں ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تینوں سورتیں سورۃ الناس, سورۃ الفلق, سورۃ الاخلاص, تینوں سورتیں قل سے شروع ہوئیں, اور یہ قل ہونے کا بڑا سگنیفیکنس ہے. قل نے اپنے یہاں پوزیشن جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کی پوزیشن میں بڑی اسٹرانگ رکھی ہے. آپ جب مسلمانوں کی ہی مختلف اسٹڈیز کو پیچھے اپنے ہسٹری میں جاتے ہوئے اسٹڈی کرتے ہیں, تھرو آؤٹ دا ہسٹری نان مسلمس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی یہ ڈسکشنز آتی رہیں, پینیٹریٹ ہوتی رہیں, آئیں پھر گئیں, آئیں پھر گئیں, آئیں پھر گئیں. कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द हिस्ट्री. क्या थी डिस्कशंस कि क्या कुरान वर्डिंग्स में महफूज है, यानी एक एक लफ्ज इसका अल्लाह की तरफ से आज तक महफूज है, या ये अपने सिर्फ मफहूम में मीनिंग्स में महफूज है, या ये दोनों में महफूज है. जस्ट थिंक, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, बिकॉज अगर आपको अपनी अगली नस्ल को इस्लाम से जोड़ कर रखना है, देन यू नीड टू नो दीज पॉइंट्स, बिकॉज ओरिएंटलिस्ट यही पॉइंट उठाते हैं. इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने वाले यही पॉइंट्स उठाते हैं. इस्लाम के ऊपर नकब लगाने वाले इन्हीं जगहों से नकब लगाते हैं. सो यू शुड बी प्री इक्विप्ड विद द करेक्ट नॉलेज, ताकि आपके पास सही इल्म मौजूद हो. क्या ये डिस्कशंस थ्रू आउट द हिस्ट्री रहीं? तीन आपको मैंने ऑप्शन बताए जिसके स्कॉलर्स ने कई कई जनरेशन्स में जवाब दिए, और अल्लाह ने हर जनरेशन में अपना कोई ना कोई मुजद्दिद भेजा जिसने अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और इस्लाम की पोजीशन को उसी तरह मेंटेन रखा जैसे रसूलुल्लाह और सहाबा और ताबेईन और तबा ताबून ने रखा था. वो क्या तीन डिस्कशंस रहे थ्रू आउट द हिस्ट्रीज? क्या कुरान के अल्फाज महफूज हैं? क्या कुरान आज भी वैसा ही है जैसा रसूलुल्लाह के कल्ब पर नाजिल किया वर्ड बाय वर्ड? दूसरा, या ये सिर्फ मफहूम में, अल्लाह ने जो कहा कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, क्या ये सिर्फ मफहूम में महफूज है? तीसरा, या ये दोनों में महफूज है? विद इन नॉन मुस्लिम्स ये डिस्कशंस होते थे. ओरिएंटलिस्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, मुस्तशरिकीन का. मुस्तशरिकीन ये पॉइंट्स उठाते थे और मुस्तशरिकीन आज भी ये पॉइंट्स उठाते हैं, बिकॉज दे हैव टू फाइंड द फ्लॉ इन द कुरान सो दे कैन प्रेजेंट टू द वर्ल्ड. ये जो मुसलमान कहते फिरते हैं कि अल्टीमेट दीन हमारे पास है, सैलवेशन का पॉइंट हमारे पास है, सबको कलमा पढ़ना है, हम ताकि उनको जो है वो एक उनके सामने एक वीक एंड जो है वो दिखा सकें. तो याद रखें, नॉन मुस्लिम डिबेट्स फिर मुसलमान माशरों में भी पेनिट्रेट हुई. जो कमज़ोर ईमान वाले होते थे मुसलमान, वो उन बहसों में उलझ के कभी कभी जो हैं वो उस बहाव में बह भी गए. लेकिन अल्लाह ने अपने बंदे रखे जिन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि ये डिबेट्स जो हैं इसको किस तरह से रखा जाए. सो क्लियर कट बात जहन में रखें कि कुरान जो है ये अपने अल्फाज और अपने मफहूम दोनों में कम्प्लीटली महफूज है. और स्कॉलर्स की कई दलीलें मौजूद हैं, उसमें से एक दलील मैं सिर्फ आपके सामने रख रही हूँ क्योंकि वो इन तीनों सूरतों से कनेक्टेड है. वो कहते हैं कि एक क्लियर एविडेंस जो आखिरी मुसहफ की तीन सूरतों में मौजूद है, जो बताती है कि कुरान मफहूम और अल्फाज दोनों में महफूज है, वो ये है कि ये तीनों सूरतें कुल से शुरू हो रही हैं. अगर सिर्फ मफहूम महफूज रखना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फरिश्ते जिब्राइल ने कहा था ना कुल. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को आकर कुरान सुनाते तो कहते आऊज़ु बिरब्बिल नास, आऊज़ु बिरब्बिल फलक, अल्लाहु अहद, वो कुल ना कहते. तो क्लासिकल स्कॉलर्स का एक स्ट्रॉन्ग दलाइल मौजूद है. वो कहते हैं क्लियर एविडेंस ये बात देती है, ये कुल की प्रेजेंस बता रही है कि कुरान अपने अल्फाज अपने वर्डिंग्स मीनिंग्स और मफहूम में कम्प्लीटली प्रिजर्व्ड है. ये है इसका वर्चू नंबर 8. जितना आपको अपने इस्लाम के बारे में इल्म होगा, आप उतनी खूबसूरती से और उतने कॉन्फिडेंस से आप इसका दिफा कर सकेंगे. आज हमें मालूम नहीं है हकीकतें, आज हम जानते नहीं अपने रसूल के मुकाम को, आज हम जानते नहीं हैं अरब के दौर को कि जहाँ की क्या रिवायात थी. तो जब ये कहा जाता है कि कैसे हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से निकाह किया हो और उस वक्त आपकी उम्र 9 साल हो, तो कुछ ओरिएंटलिस्ट की बातों में बहने वाले मुसलमानों ने कह दिया कि ना ना ना, हज़रत आयशा उस वक्त 9 साल की नहीं थी, वो एक्चुअली 18 ईयर्स की थी. जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ होल स्टडी, आप पढ़ें उसको और देखें कि उस दौर में बच्चियां कितनी तेज़ी से मैच्योर होती थीं. बच्चियां नहीं होती थीं, ये तो हमने मामाज बेबीज बना के रखी हुई हैं सब, और मामाज बॉयज़ बना के रखे हुए हैं. वो कंप्लीट एडल्ट होती थी 8 से 9 साल के अंदर, कम्प्लीटली मेंटली मैच्योर, और प्यूबर्टी हिट कर जाती थी. और वो अरब का कल्चर, वो सहरा का कल्चर, वहाँ पर कोई इस तरह से छोटी छोटी बेबीज़ की तरह नहीं ट्रीट किया जाता था. इट वॉज़ कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर. क्या उम्र थी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्की, एंड ही स्टार्टेड डूइंग द तावील ऑफ कुरान इन अ ब्यूटिफुल वे, जस्ट 17 ईयर ओल्ड बॉय, जस्ट 17 ईयर ओल्ड. आपका अपना सिंध फतह करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, क्या एज थी उसकी, पूरा सिंध कॉन्कर कर लिया उसने, 17-year-old बॉय, हम अपने 17 साल के बच्चों को देखें, बच्चे, लिटरली बच्चे, माँ बाप के सामने बच्चे, बट कंप्यूटर्स के सामने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, मोस्ट ऑफ देम बाइपोलर बच्चे मेजॉरिटी, अम्मा अब्बा के सामने मासूम हो सकते हैं, आई एम सॉरी अगर बच्चे मुझे ये सुन रहे हैं, जारी बात है मैं सब बच्चों को नहीं कह रही, बट द मेजॉरिटी यूथ जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, अपने आप को अंधे एतमाद में नहीं रखना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से नेक बच्चे मौजूद हैं विदाउट एनी डाउट माशाल्लाह, उनमें से बहुत से बच्चे इस वक्त मुझे यकीनन सुन भी रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनको बेतहाशा टेम्पटेशंस होने के बावजूद वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वो एक डिसेंट एटीट्यूड पर रखते हैं, स्कूल्स, हाई स्कूल्स, ए लेवल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज में वो अपने आप को डिसेंट डीलिंग्स के साथ, अपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन पर रखते हैं। आई नो अल्हम्दुलिल्लाह मैनी बच्चा, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत करे, और अल्लाह हमारे तमाम मुसलमान बच्चों को ऐसा ही ईमान दे दे, तमाम मुसलमान बच्चों को। बट मेजॉरिटी यूथ कहाँ जा रही है, पोर्नोग्राफी कहाँ बढ़ गई है, क्या देखते रहते हैं बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों से अगर उस दौर के बच्चों को जो है वो कंपैरिजन में लाने की कोशिश करेंगे, हमें कभी नहीं समझ आएगा। जिस दिन आपको ये फिलॉसफी समझ आ गई, आप खड़ी होंगी अगर किसी ने भी कोई गलत अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी जौजा के बारे में या आपकी किसी मैरिटल लाइफ के बारे में उठाए, मगर लोग गंदे गंदे जुमले और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और हम चुप करके सुनते रहते हैं, जस्ट लाइक एम्बैरस्ड वन, क्यों, इल्म नहीं है, हिम्मत नहीं है बोलने की, जिसमें इल्म नहीं होता उसी में हिम्मत नहीं होती, जिसमें अमल नहीं होता उसी में हिम्मत नहीं होती, जिसमें एक खाली इंफॉर्मेशन होती है वो अपने सर्कल में बोल सकता है, बट वो किसी ऐसी जगह पर जाकर नहीं बोल पाता है जहाँ ज़रूरत है कि इस्लाम को, रसूल अल्लाह को, आपकी अजवाज को और कुरान को और अल्लाह की तौहीद को डिफेंड किया जाए। ये टाइम है इस सेक्युलर वर्ल्ड के अंदर डिसेंट तरीके से, हिकमत के साथ, एक इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करते हुए, ऑन द सेम ग्राउंड्स, ऑन द सेम फिलॉसफीज जो मॉडर्न वर्ल्ड फिलॉसफीज इस्तेमाल की जाती हैं, इस्लाम को प्रेजेंट किया जाए, इस्लाम को डिफेंड किया जाए। कोई मेरे सामने बैठकर मेरी माँ को गाली दे दे और मैं कहूँ हाँ शायद ठीक ही कह रहा है, यू कैन जस्ट से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई, हाउ डेयर वन कैन से समथिंग अब्यूसिव अबाउट योर मदर। लेकिन हम मुसलमान यही तो इस वक्त कर रहे हैं, और अगर हम ये कर रहे हैं तो हम हमेशा ऐसा नहीं करेंगे अगर हमने आज भी इल्म हासिल कर लिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस फेज में आ चुके हैं जहां इल्म हासिल करने की तमन्ना मेजॉरिटी लोगों के अंदर आ गई है। नाउ द पॉइंट इज कि जो इल्म हासिल करे प्लीज लिव टू दैट नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं, गाजी ना बने, किरदार के गाजी बने, जो सीखें अमल में लाएं, जो रब से मोहब्बत करता है उसकी रब से मोहब्बत उसको एक ग्रेसफुल ह्यूमन बीइंग बनाए, उसको एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी बनाए, उसको इख्तलाफ का अदब आए, उसको जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हिकमत के साथ प्रेजेंट करने आए, उसको अपनी औलाद को हैंडल करना आए। अगर आप औलाद के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डालना चाहती हैं, प्लीज़ ये मैं आपको बता दूँ, डंडे से नहीं जाएगी, गुस्से से नहीं जाएगी। इफ़ दे आर इन द एज ऑफ 16+, भूल जाएं कि आप उनको डांट डांट कर दीन सिखा सकते हैं, आप कुछ नहीं करेंगी, वो आपसे भी दूर हो जाएंगे और वो दीन से भी दूर हो जाएंगे। जस्ट यूज द मीठी छुरी वाला फिलॉसफी, प्यार से, मोहब्बत से, माँ होते हुए आपको गुस्सा आ जाता है बिकॉज आपको अंदाज़ा है कि आप लाखों दफ़ा कह चुके हैं, बट इट्स ओके, डोंट फॉरगेट नूह अलैहिस्सलाम, 950 ईयर्स की तो उनकी तबलीग थी, 950 ईयर्स कितनी मरतबा कहा होगा, तो हमारा तो बहुत छोटा सा ग्राफ बनेगा उनके सामने। जस्ट कीप अ गुड होप फॉर एवरीवन, दिस इज़ वर्चू नंबर 8 के कुरान अपने मफहूम और अपने अल्फाज में महफूज है, और सूरतुल इख़लास और दोनों सूरतें सूरत फलक और सूरतुल नास उसकी जो हैं वो क्लियर एविडेंस हैं। द लास्ट वर्चू, फिर इंशाल्लाह मैं अपनी क्लास वाइंड अप करती हूँ, द लास्ट वर्चू जो कि वर्चू नंबर 9 है, और अगेन बहुत फ़ायदेमंद है, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर ख़वातीन चाहती हैं कि उनको पता चले कि जब उनको रोज़ा नहीं रखना, जब उनको नमाज़ नहीं पढ़नी है, तो वो क्या करें, कौन से अज़कार करें, किस तरह से करें। कल Q&A में मैंने काफ़ी जवाब दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऑप्शंस भी बताए हैं। बट नाउ इन वर्चुअल नंबर 9 फॉर्म आई एम गिविंग यू अनदर पॉइंट टू डू इन दोज डेज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आती है मुसनद अहमद में, आपने फरमाया मन क़रा कुल हुवल्लाहु अहद, जो पढ़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास, हत्ता यख्तिमहा अश्र मर्रातिन बनल्लाहु लहु कसरन फिल जन्ना, जो सूरतुल इखलास 10 मर्तबा पढ़ेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। एक तो जन्नत, फायदा नंबर 1, ओ माय गॉड ह्यूज रिवॉर्ड, एक तो जन्नत, दूसरा घर भी नहीं, बैत भी नहीं जन्नत में, मसाकिन भी नहीं जन्नत में, असर महल बनाएगा, मजीद रिवॉर्ड अल्लाह खुद बनाएगा, अल्लाह एंजल्स नहीं अपॉइंट करेगा, अल्लाह बनाएगा। मन करा कुल हुवल्लाहु अहद हत्ता यख्तिमहा अश्र मर्रातिन बनल्लाहु लहु कसरन फिल जन्ना, जिसने 10 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ी अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। नाउ वी ऑल हैव एन इंसेंटिव, वजीफे तलाश करते रहते हैं ना, वजीफे का लफ्ज रसूलुल्लाह से नहीं हमने सीखा, ये वजीफा तो बहुत बाद में आकर सब कॉन्टिनेंट में डिराइव हुआ है, बट अब इंशाल्लाह जैसे जैसे इल्म आता है इंसान अपने आप को रिफाइन करता जाता है, जैसे जैसे इल्म आता है आपको पता चलता जाता है, पहले आप एक सबक पढ़ रही होती हैं उसमें आपको सब चीज़ें एक जनरलाइज फॉर्म में पढ़ाई जा रही होती हैं, जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाती है आपको चीज़ों को स्पेसिफिक पॉकेट्स में डालना आ जाता है। जब आप क्लास 2 में थी तब आपको नहीं पता था सोशियोलॉजी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, अलजेब्रा क्या होता है, नहीं पता था ना क्लास नंबर 2 में, ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में। अब आप आ गए यूनिवर्सिटी में, एवरीथिंग इज इन द स्पेसिफिक पॉकेट इन द सेम वे। अब तक हम जहाँ तक पल के जवान हो गए, चलो बूढ़े भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, दीन पर ही बूढ़े हुए ना, इस पर कुरान सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी ज़िंदगी में कुरान सुनने का मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक जो सीखा था अब उसको प्रॉपर पॉकेट्स में डालने की कोशिश करें। वजीफे की टर्म रसूलुल्लाह ने नहीं सिखाई, आपने हमें सिखाया है अज़कार, दुआ, तस्बीहात, ठीक है। तो अगर आपको अपने दिन भर के अज़कार में और इजाफा करना है, आपको अपने जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी उन दिनों में भी अपनी ज़ुबान को अल्लाह के जिक्र से अटैच रखना है, कीप अ टारगेट एवरी डे मिनिमम, बाकी तमाम सुबह शाम के अज़कार के साथ आप 10 मरतबा सूरतुल इखलास पूरी मोहब्बत से पढ़ेंगी, इस उम्मीद से भी पढ़ेंगी कि मेरा जन्नत में अल्लाह महल बनाएगा, इस उम्मीद से भी पढ़ेंगी कि जब मैं सूरतुल इखलास पढ़ूंगी तो मुझे अल्लाह से मोहब्बत में अपने बढ़ना महसूस हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सूरा, वेरी एकेडमिक और जो हमें अल्लाह से कॉन्स्टेंटली जोड़ती है। तो आज इंशाल्लाह यहाँ तक करते हैं, हमने आज इस सूरत के 9 वर्चूज कर लिए, कल इंशाल्लाह जो मैं पहला चैप्टर शुरू कराऊंगी वो मैं सूरतुल इखलास के नामों का कराऊंगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं यहाँ लाइव आते ही मैं आप लोगों के लिए सूरतों के जो नाम, जो इस सूरत के टोटल नाम हैं वो मैं आपको इसका PDF यहाँ पर भेज दूँ। अच्छा, टोटल सूरत के नाम जो हैं वो 21 हैं, मैं आपको 21 के 21 लिख कर तो दे दूँगी लेकिन मैं बताऊँगी 21 नहीं, डिटेल में, डिटेल में मैं आपको 5, 6 या 7 बता दूँगी ताकि आपके पास एक छोटा सा सिनॉप्सिस जो है वो उन नामों की डिटेल का आ जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे हर दिन को, हर रोज़े को, हर इबादत को, हर छोटी से छोटी नेकी को और हर हमारी एफर्ट को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह ये आज 10वां रोज़ा है हमारे मुल्क के अंदर रमज़ान का, अल्लाह बहुत तेज़ी से रमज़ान गुजर रहा है, अल्लाह बेहतरीन तरीके से हमें अपनी मगफिरत की तरफ दौड़ने वाला बना दे। अल्लाह जो गलतियां हमसे इन 10 दिनों में हुई हैं अल्लाह दरगुजर फरमाइए, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप गफूर हैं, अल्लाह आप तो बार बार माफ़ फरमा देते हैं, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दें और अल्लाह हमारी औलादों को बेहतरीन तरीके से इस दीन को हाथ में लेकर आगे बढ़ने वाला बना दें। अल्लाह हमारी औलादें इस दीन का बैनर पूरे कन्विक्शन के साथ और पूरे फ़खर के साथ उठाने वाली बने और अल्लाह हम सब मुसलमानों को ग्रेसफुल मुसलमान बना दे। अल्लाह हमें वैसा बना दे जैसा आप चाहते हैं। अल्लाह मैं नहीं चाहती कि मैं वैसे इंसान बन जाऊँ जैसे मेरा नफ्स चाहता है, अल्लाह नहीं, मैं चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं हम वैसा इंसान बन जाएँ جیسا آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں، جیسا آپ ایک مسلمان سے، ایک متقی انسان سے توقع رکھتے ہیں، اللہ آپ ہمیں ویسا بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. کل ہم سورۃ الاخلاص کا اپنا اگلا چیپٹر سورۃ کے ناموں کا شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے، آپ سب کی ہر طرح کی ایفرٹس کو قبول فرمائے. اللہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان کی برکتیں سمیٹنا آسان بنا دے. اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین، واجعلنا فی رمضان من عبادک الصالحین، واجعلنا فی رمضان من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.